देव गाड़ी में बैठा ही अक्षित को मैसेज करता है और फोन की देखकर संध्या से कहता है, संध्या अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं करेगा, तुम सिर्फ मेरी हो। और देव संध्या को घर ले जाता है और अपने रूम में ले जाकर बेड पर छोड़ता है। तभी वहां कौशल्या जी और दीपा आ जाती है। कहाँ थी संध्या बेटा तुम, माँ ने पूछा। हाँ भाभी, आप कहाँ चली गई थी, दीपा ने पूछा। संध्या कोई जवाब नहीं देती है। देव अपने कमर पर हाथ रखे खड़ा होता है, तभी मुड़ते हुए चिल्लाकर बोलता है, आपसे मतलब, और मैं बता देता हूँ, संध्या ने बाहर घूमने गई थी और अब आ गई है। ओके, अब आप जाइए, संध्या थक चुकी है, आराम भी करना है, संध्या को भूख भी लगी होगी, जाइए माँ खाना बनाइए, देव बोलता है। और दोनों देव के चिल्लाने से डरते हुए संध्या की ओर देखते हैं। समझ नहीं आया, आप दोनों जाइए, मुझे संध्या से ज़रूरी बात करनी है और आप दोनों से मैं बाद में बात करता हूँ। और माँ और दीपा दोनों रूम से चली जाती हैं। देव रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और संध्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। संध्या अपनी नज़रें उठाकर देव की ओर देखती है। एक बात पूछूं जान, संध्या के पास बैठते हुए। संध्या कुछ नहीं बोलती है। संध्या पूछूं, हाँ में सिर हिलाओ, संध्या हाँ में सिर हिला देती है। अक्षित को पता कैसे चला, मतलब तुमने अक्षित को कैसे बताया, बुलाया, अक्षित आया, बताओ, क्योंकि उस दिन तो तुमने कुछ नहीं कहा था और फ़ोन पर तो बात भी नहीं हुई, फिर ये प्लान कैसे बनाया, बताओ मुझे, बोलो, बताओ। संध्या देव की ओर देखते हुए सोचती है, अगर माँ के फ़ोन के बारे में बोला तो एक वही ज़रिया है अक्षित को इन्फॉर्म करने का। नहीं नहीं, वो नहीं बता सकती मैं, बोलो। वो मेरे फ़ोन, मतलब जो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए था, फ़ोन तो नहीं किया, मैसेज किया, फिर डिलीट कर दिए। अच्छा, संध्या का फ़ोन टेबल से उठाते हुए, इससे किया और कैसे किया बताना। वो आज जब पेट करके कैमरे की ओर बैठे थे तब, और तुम्हारा फ़ोन आया तो हमने सब डिलीट कर दिया, तुम्हें पता ना चले इसीलिए, और सिर्फ आ जाए यही कहा मैंने अक्षित से, बताया सब यहाँ से जाने के बाद। ये सुनते ही संध्या से देव उस फ़ोन की देखते बेड से खड़ा होता है और फ़ोन को ज़मीन पर फेंक मारता है, जिससे उस फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। संध्या अपने कानों पर हाथ रख लेती है। देव फ़ोन की ओर देखते हुए बोलता है, जो चीज़ मुझे मेरी संध्या से दूर करना चाहेगी उसे ही मैं ख़त्म कर दूंगा। और संध्या के पास बैठते हुए, संध्या को कंधों से पकड़ते हुए, क्यों संध्या, क्यों, क्यों किया ऐसा तुमने, क्यों? संध्या, अभी भी तुम जवाब मांग रहे हो मुझसे, नफ़रत करते हैं हम तुमसे, नहीं रहना तुम्हारे साथ, इसीलिए किया। खुश? नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार करना है, क्या करना है? हंसते हुए, प्यार? यहाँ आई हूँ देव, इसका ये मतलब नहीं तुम्हें लेकर मैं अपनी सोच बदल लूँ, तुम घटिया हो समझे। इतना सुनते ही देव संध्या पर हाथ उठा देता है और फिर खुद का हाथ ही दीवार पर मार देता है। और संध्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, जान क्यों गुस्सा दिला रही हो, सब तो ठीक था, अचानक क्या हो गया तुम्हें, क्यों मुझे छोड़ने की बात कर रही हो, क्यों संध्या? और देव रोने लग जाता है संध्या की गोद में सिर रखते हुए। आई एम सॉरी संध्या, आई एम सॉरी, क्यों नाराज़ हो मुझसे? और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम अभी रेस्ट करो, हम आराम से बात करेंगे, ओके? मैं खाना लाता हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना, दवा भी लेनी है, मैं अभी आता हूँ, कहते देव बाहर चला जाता है। संध्या देव के जाते ही खुद से बोलती है, मैं जानती हूँ देव तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, पर अब तुम्हारे ऐसे बर्ताव से भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं अक्षित कैसे होगा। अक्षित का घर। अक्षित घर लौटता है तो मॉम डैड वेट कर रहे होते हैं और दोनों अक्षित को देखकर घबरा जाते हैं। मंजू जी, क्या हालत कर रखी है अपनी? अंकित जी, बेटा ये चोट कैसे लगी? अक्षित दोनों की ओर देखता है। बताओ बेटा, अक्षित के गाल को छूते हुए मंजू जी ने बोला। कुछ नहीं मॉम, वो बस थोड़ी सी मारपीट हो गई थी, मैं ठीक हूँ, कहते अक्षित अपने रूम में चला जाता है। अंकित जी, मारपीट? हमारा अक्षित तो मारपीट करता ही नहीं कभी, आज क्या हो गया जी, और कुछ बताया भी नहीं, मंजू जी ने परेशान होते हुए कहा। मैं बात करता हूँ जाकर अक्षित से, अंकित जी ने बोला। हाँ आप जाइए, और मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ अक्षित के लिए, मंजू जी कहती है। अक्षित अपने रूम में सिर पकड़कर बैठा होता है, तभी अंकित जी अक्षित के पास बैठकर बोलते हैं, लाओ ड्रेसिंग कर देता हूँ। मैं ठीक हूँ डैड, अक्षित बोलता है। चेहरा इधर करो, देखो कितनी चोट लगी है, दिख रहा है कितना ठीक हो तुम, कहते अंकित जी अक्षित के दवा लगाकर बैंडेज लगाते हैं। तभी मंजू जी दूध लेकर आ जाती है। लो ये दूध पियो, घाव जल्दी भर जाएंगे, और पूछती हैं, हमें बताओ बेटा कभी ऐसा ना हुआ, फिर आज मारपीट कैसे हुई, मंजू जी ने बोला। अंकित जी ने भी कहा, हाँ अक्षित हम परेशान हो रहे हैं और तुम्हें देखकर भी लग रहा है कुछ तो हुआ है, पर क्या? तभी अक्षित रोते हुए डैड के गले लग जाता है। किचन, देव कौशल्या जी और दीपा से बात करने किचन में जाता है। देव को वहां देख दीपा के हाथ से ग्लास छूटकर टूट जाता है और दीपा डरते हुए देव से कौशल्या जी के पीछे खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? मैं तो यहाँ खाना बना के नहीं संध्या के लिए पूछने आया था, देव ने बोला। हाँ बन गया है बेटा, दीपा थाली में डाल, कौशल्या जी ने कहा। जी माँ डालती हूँ, दीपा ने कहा, और खाना देव को पकड़ाती है। देव, एक बात पूछूं? कौशल्या जी, हाँ देव। देव, जो आज हुआ वो आगे नहीं होगा ना, आप दोनों जब मैं घर पर नहीं होऊंगा तब भी और कभी भी संध्या को अकेले नहीं छोड़ेंगी, आज जो संध्या ने किया वो फिर से नहीं करने देना है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, मेरी संध्या मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए, आप दोनों करते क्या हो? संध्या का ख्याल भी नहीं रख सके? आज जो हुआ मेरे कहे बिना आप कहीं नहीं जाएगी माँ, और पूरा ध्यान संध्या पर होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौशल्या जी, हमें नहीं पता था बेटा, संध्या ने हमसे झूठ कहा है, वो यहाँ से जाना चाहती है। उसने बोला तुमने कहा है तुम आ रहे हो, तो हम चले गए। देव, मुझसे भी फोन करते नहीं पूछा? और आप कहना क्या चाहती हैं? सारी गलती मेरी संध्या की है? नहीं माँ, सारी गलती आपकी है, आप बड़े हो, ध्यान देना चाहिए था। दीपा माँ की ओर देखती है और कौशल्या जी चुप हो जाती है। देव दोनों को घूरते वहां से चला जाता है। देव के जाते ही दीपा कहती है, हमें बता रहे हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हो भी नहीं सकता है, कब तक रोक लेंगी भाभी को, वो चल नहीं सकती, फिर भी हिम्मत देखो, निकल गई, पर किस्मत खराब हो तो क्या करें, अगर वो चलती ना तो कब की फुर हो जाती, और इन्हें बता देती कि वो संध्या है, मजबूर है तो खुद को क्या समझते हैं। कौशल्या जी, क्या बोल रही है, देव सुन लेगा, चुप कर। दीपा, हम भी सुन ही रहे हैं उनकी, और यही करते रहेंगे, रखो आप अब भाभी का ख्याल। नहीं नहीं, अब तो उन पर नजर भी रखनी है, कहते हुए दीपा वहां से चली जाती है। क्षमशः।